कल अकोले में वाणी चल रही थी 1966 की, बात चल रही थी बाप समझाते हैं कि मेरे मीठे मीठे बच्चों अब तुम पतित न बनो, तुम पुकारते ही आते हो कि आकर के हमें पावन दुनिया में ले चलो। कितने लंबे समय से पुकारा है, 63 जन्म हो गए, 2500 साल पुकारते पुकारते हो गए, पावन दुनिया में चलने के लिए बुलाते रहे और अभी मैं आया हुआ हूँ। कितने वर्ष हो गए, अभी बुलाने की तो बात ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य आत्माएं मान सम्मान चाहती है तो उनको बुलाना पड़ता है। बाप तो मान सम्मान नहीं चाहते, बिना बुलाए ही आते। तो अब ये अंतिम जन्म पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। ये बाप रोज ही पढ़ाते हैं और रोज ही समझाते हैं। अब कहते हैं बच्चों बाप को पूरा पूरा याद करो, पूरा पूरा याद करेंगे तो पक्के घर पहुंच जाओगे। बाप के घर पहुंचेंगे ना, तुम बच्चों ने 84 जन्मों का चक्र काटा है, अभी फिर काटोगे, फिर 5000 साल के बाद आकर के मिलोगे। अब ये देह की सब बातें छोड़, अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो, अभी पतितपना छोड़ दो। भगवान का ये फरमान है और बाप के पास आए करके फिर हाथ छोड़ नहीं जाना। अब अगर पावन नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही होता रहेगा। तुमको पतित दुनिया से अंदरूनी घृणा आनी चाहिए। जब तक अंदरूनी घृणा नहीं आई है तब तक सच्चा त्याग नहीं हो सकता। अभी बाप कहते हैं बच्चों मैं आया हूँ तुमको सुख घनेरे देने के लिए, तो ले लो ना। बाप को याद करेंगे तो 16 कला संपूर्ण बनेंगे और माला के दाने बनेंगे, फिर तुम विश्व के ऊपर राज्य करेंगे। माला रूपी संगठन में नहीं आवेंगे तो राज्य नहीं करेंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ, उन बच्चों के लिए नहीं, तुम बच्चों के लिए। तुम किसको कहा जाता है? सन्मुख बैठने वालों को तुम कहा जाता है, और जो बाप के सन्मुख नहीं बैठते सिर्फ माँ के सन्मुख बैठ कर रह जाते हैं, या यज्ञ के आदि में भी बैठे थे तो पहचाना नहीं था, बिगर पहचाने ही बैठे हुए थे तो भी कोई फायदा नहीं। तो तुम मेरे सन्मुख सुनते हो तो तुमको 84 जन्मों की प्राप्ति होती है। क्योंकि तुम बच्चों के लिए मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ, ان بچوں کے لیے جو 81 جنم لینے والے ہیں ان کے لیے سورگ استھاپن نہیں کرتا ہوں. پھر کون کرتا ہے؟ ان کے لیے سورگ استھاپن 16 کلا والا کون کرے گا؟ اور دھرم پتائے ہیں, وہ دھرم پتائے سورگ تو نہیں استھاپن کرتے. سورگ تو ایک بار باپ ہی آ کر کے استھاپن کر دیتے ہیں, لیکن ان کی مت پر چلنے سے, جو مت پر چلتے ہیں دویت مت پر, ان کو وہ پراپتی کم ہو جاتی. سورگ میں تو آویں گے لیکن گائن نہیں ہوگا. سیکنڈ نارائن, تھرڈ نارائن, فورتھ نارائن کا کوئی گائن نہیں ہوتا. صرف ایک ہی نارائن ہے جو نر سے نارائن بنتا ہے, ان کا گائن ہوتا ہے. یہ تھا راجا تھا پرجا. تو باپ کہتے ہیں تم بچوں کے لیے سورگ استھاپن کرتا ہوں, لیکن یہ باپ تمہارا نراکار ہے, ساکار نہیں ہے. جو سورگ استھاپن کرنے والا باپ ہے وہ نراکاری, نروکاری, نرہنکاری اسٹیج میں رہنے والا, لیکن ابھی گپت ہے. گپت ہونے کے کارن پھر پہچان نہیں پاتے. ابھی باپ بچوں کو سمجھا نہیں دیتے ہیں کہ اے میرے سکیل لے بچوں, آپس میں اگر ایک دو کو دکھ دیں گے تو دکھی ہو کر کے مریں گے. آپس میں ہی لڑ مرتے ہیں, ہیرکھنڈ ہو کر کے نہیں رہتے, ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے. ہے میرے بچے آتما آتما بھائی بھائی ہیں, 84 جنم لینے والے ہیں, لیکن مایا کا پربھاؤ ایسا پڑ جاتا ہے کہ وہ پرتکشتا جو ہونی چاہیے وہ ہو نہیں سکتی. مکھ سے اتنا بھی نہیں بولنا ہے کہ فلانا ایسا ہے, جیسا بھی ہے اپنے لیے ہے. اچھا ہے تو اپنے لیے ہے, برا ہے تو اپنے لیے. اگر ایسے کرتے رہیں گے کہ فلانا ایسا ہے, فلانی ویسی ہے, تو اپنا پد گنوا دیں گے. انت میں سب کو ساکشاتکار ہو جائے گا. اب یہاں تم کو بابا برہما کے دوارا باپ کا ورثہ دلوائے رہے ہیں. اس کے دوارا دلوائے رہے ہیں برہما دوارا. اور کون دلوائے رہے ہیں؟ شیو بابا. مانا شیو بابا الگ ہے اور جس کے دوارا دلوائے رہے ہیں وہ برہما بابا الگ ہے. برہما بابا وہ تو شریر چھوڑ گیا, اب کہاں سے آئے گا؟ کوئی میں کوئی سول پرویش کرتی ہے تو اس کا پرانا چولا یاد آتا ہے نا, کہ اس سول نے پرویش کیا, بتاتی ہے نا میں امک سول ہوں. تو اس کے دیہ کے اوپر, چہرے موہرے کے اوپر دشٹی جاتی ہے. تو برہما کے دوارا ہی سورگ استھاپن کرتا ہوں, برہما کے دوارا ہی تم کو جیون مکتی کا ورثہ دیتا ہوں. بھلے برہما نے شریر چھوڑ دیا, پھر بھی وہی برہما کی سول ابھی بھی بچوں میں پرویش کر کے پارٹ بجائے رہی ہے نمبر وار. لیکن پرانے چولے سے تو ان کی پوجا نہیں ہوتی, مندر نہیں بنتے, لیکن وہی آتما کو कोई नारी चोले में जब प्रवेश करके प्रत्यक्ष होती है जगदम्बा के रूप में, चाहे जगदम्बा कहो चाहे ब्रह्मा कहो, बात तो एक ही हो जाती है। तो उस रूप स्वरूप के द्वारा उसकी पूजा होती है, जिसमें प्रवेश करती है वो शरीर पूजा जाता है, और पूजनीय बनने वाली आत्मा उसमें वही ब्रह्मा की ही कार्य करती है। जैसे ब्रह्मा के चोले में सहनशीलता का पार्ट किसने बजाया? ब्रह्मा ने बजाया, कृष्ण की सोल ने बजाया, या शिव बाबा ने बजाया? शिव बाबा ने बजाया। ऐसे ही जब जगदम्बा के रूप में प्रवेश होता है ब्रह्मा की सोल का, तो वही शक्ति स्वरूपिणी का पार्ट बजाने वाली आत्मा है। जगदम्बा का चोला होता है, माँ का पार्ट बजाने वाली वही सोल है। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं मेरा एक ही सिकिल्दा बच्चा है, कौन? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के द्वारा बाप का वर्षा मिलता है, भूल नहीं जाना। अब बाप आते ही हैं पावन बनाने के लिए, वर्षा तो बाद में मिलेगा, पहले क्या करना है? पावन बनाने के लिए आए हैं तो बीच में नहीं छोड़ जाएंगे, तो आकर के समझो कि जिसलिए आए हैं वो कार्य पूरा करके जाना है। आत्माओं को परमपिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं, जब बैठ करके समझाते हैं तो उस समझाने को कहा जाता है रूहिहन। सुप्रीम रूह आकर के रूहों से बात करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, दूसरा कोई भी इस रूहिहन को समझ नहीं सकता। ये तो रूह है जो शरीर द्वारा बात करती है, रूह पतित बनती है, रूह रूह को पावन बनाती है। कैसे बनाती है? कोई मंत्र फूंक देती है क्या? मंत्र नहीं फूंक देती है, क्या करती है? संग का रंग लगता है, इंद्रियों से ही संग का रंग लगता है, अटैचमेंट की बात है। तो जब अटैचमेंट हो जाता है तो जिसके साथ भी अटैचमेंट हो जाता है उसका संग का रंग पूरा लग जाता है। तो बाप भी कहते हैं मुझे बड़े प्यार से याद करो, व्यभिचारी याद नहीं करो। व्यभिचारी याद करेंगे तो आधा संग मेरा लगेगा, आधा संग दूसरे का लगेगा। हो सकता है दूसरों का संग ज्यादा ही लग जाए, तो बजाय पावन बनने के और ही पतित बन पड़ेंगे। यहाँ अगर वायुमंडल को खराब करेंगे, जैसे क्लास में बैठते हैं और दृष्टिवृत्ति चंचल होती है, वाइब्रेशन खराब करते हैं, तो बाप के कार्य में, बाप की सभा में विघ्न डालते हैं या सहयोगी बनते हैं? विघ्न डालते हैं। आत्मा कहती है कि हमने ही एक शरीर छोड़कर के दूसरा लिया। सुप्रीम सोल शरीर धारण नहीं करते गर्भ से, उनका कोई अटैचमेंट नहीं होता है। दूसरे शरीर में आत्मा का प्रवेश तब होता है जब कोई अटैचमेंट बनता है। अनेक प्रकार का लगाव लग जाता है, पति का पत्नी में लगाव लग जाता है, तो अगले जन्म में जाके उससे मिलते हैं। पत्नी का पति में लगाओ, पति का पत्नी में लगाओ, वो अटैचमेंट हो जाता है, तो अंत मत जो गति होती है। तो बाप कहते हैं अभी मेरे को याद करने का पूरा पुरुषार्थ करो और मेरे से पूरा ही वर्षा लेकर के देखो कि क्या प्राप्ति होती है। वर्षा पहले कोई स्थूल रूप में नहीं मिलता है, ये सुख शांति का वर्षा पहले सूक्ष्म में आत्मा को अनुभूति होती है। तो लेकर के देखो, नहीं तो बाप बच्चों से पूछते हैं हेवेनली गॉड फादर मिला है तो तुम नरक में क्यों बैठे हो, इसका मतलब क्या हुआ। अगर पूरा ही कनेक्शन जुटा हुआ हो अभी बिचारी तो बच्चे बाप के दुखी नहीं हो सकते। तो वर्षा लेकर के देखो और आप समान भी बनाते रहो, जितना जितना वर्षा लेते जाएं, जितनी जितनी अनुभूति करते जाएं, वो अनुभूतियां दूसरों को बांटते रहेंगे तो अपनी अनुभूति पक्की होती रहेगी। जैसे कंप्यूटर में कुछ छपाई का काम करते हैं, टाइपिंग का काम करते हैं तो सेव करते जाते हैं, अगर सेव ना करें तोड़ जाता है। तो ऐसे ही जो अनुभूति करते हैं वो अनुभूतियां दूसरों को बांटते जाओ, देते जाओ, दूसरी आत्माएं भी खुशी में अनुभव करें कि हमें ये अनुभूति इनसे मिली, तो तुम्हारा पक्का हो जाएगा। सन्यासियों का तो है हद का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। कैसे? वो तो घरग्रस्त को स्थूल में छोड़ देते हैं। क्या? वो संग ही करना छोड़ देते हैं और तुम
घरग्रस्त में रहते,
तुम घरग्रस्त के कीचड़ को छोड़ते नहीं हो, प्रैक्टिकल में तो साथ में रहते हो लेकिन बुद्धि, ये तुम्हारा बुद्धि का योग है, बुद्धि से त्याग करते हो। तो बुद्धि से त्याग कैसे होगा? अटैचमेंट टूटेगा तभी तो बुद्धि से त्याग होगा। अगर अटैचमेंट बुद्धि का जोड़ा रहे तो बुद्धि का त्याग थोड़े ही कहा जाएगा। वो सन्यासी तो घर बार छोड़ करके जंगल में जाकर के बैठते हैं, तुम्हें कोई जंगल में जाकर के बैठने की बात नहीं है। जंगल में जाकर के बैठने से मन कंट्रोल नहीं हो जाएगा, हठ पूर्वक इंद्रियों का कंट्रोल करते हैं। यहां बाप हठ योग नहीं सिखाते, ये राज योग है, सब कुछ सहज सहज स्वतः ही हो जाता है। सिर्फ मैं जो युक्ति बताता हूं कि कोई भी कर्म करते हुए मुझ बाप को याद करो, अगर मेरे को याद करेंगे अब भी विचारी रूप में याद करेंगे तो कोई के संग का रंग तुमको लग नहीं सकता, तुम्हें याद भी नहीं आएगी। नहीं तो बुद्धियों का अटैचमेंट जहां लगा हुआ होता है, अटैचमेंट पूर्वक किसी को एक सेकंड भी दृष्टि से देख लिया तो उसकी याद जरूर आती है। बाप ये बुद्धियोग परिपक्व करना सिखाते, ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि इंद्रियां पूरी कंट्रोल में हो जाए, अनुभव हो कि हमारी इंद्री निस्तेज होने वाली नहीं है, भले किसी के संग के रंग में आती है लेकिन निस्तेज पना ना आने पाए। अगर निस्तेज आता है, पतित पना आता है, اس کا مطلب کچھ نہ کچھ اٹیچمنٹ لگا ہوا ہے. تمہارا ہے گھر بیٹھے ساری دنیا کا میرا, گھر میں بھی بیٹھے رہو اور ساری دنیا کا بیراگ بھی کر سکتے ہو. تم جانتے ہو کہ ابھی یہ ناٹک تو پورا ہوتا ہے, جب دنیا ہی خلاص ہونے والی ہے تو بدھیوگ نہیں جائے گا. جیسے ارجن سے بھگوان نے کیا کہا, اے ارجن یہ سب مرے پڑے ہیں, یہ پہلے سے ہی سمجھ کے مرے پڑے ہیں. تو ایسے ہی یہ ساری دنیا جو ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ سب سب جانے والی ہے. ایٹم بموں کی بھوشیکا میں کچھ بھی بچنے والا نہیں ہے. اب لگاؤ لگانا چھوڑ دو, یہ پرانی دنیا وناش ہونی ہے. اب ہم کو واپس اپنے گھر جا کر کے پاٹ بجانا ہے. گھر واپس جائیں گے تو لوٹ کر اس دنیا میں آئیں گے, اپنا پاٹ بجائیں گے. تو یہ بے حد کا ویراگ ہے. اس بے حد کے ویراگ کو وہ سنیاسی نہ سیکھتے ہیں اور نہ سکھائی سکتے ہیں. اوم شانتی. یہ راتری کلاس ہے 2966 کا. میٹھے میٹھے بچوں کو یہاں مدھوبن میں رہنے سے یہ بھاسنا آتی ہے کہ ہم باپ دادا کے گھر میں آئے. کیا کسی ویکتی کے گھر میں نہیں آئے ہیں, کوئی دیہداری کے گھر میں نہیں آئے ہیں, کس کے گھر میں آئے ہیں؟ باپ دادا کے گھر میں آئے یا باپ دادا کے گھر میں رہے ہوئے ہیں. اگر پرماننٹ رہنے والے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم باپ دادا کے گھر میں رہ رہے ہیں, کسی ویکتی کے پرسنالٹی کے گھر میں نہیں رہ رہے ہیں. اور بچوں کو باپ سے وشو کے مالک پنے کا ورثہ مل رہا ہے. جو بھی آنے والے ہیں یا جو بھی رہنے والے ہیں وہ یہ انبھوتی کرتے ہیں کہ ہم باپ کے گھر میں بیٹھے ہیں, باپ کے گھر میں آئے ہیں. اگر یہ بھاسنا بدھی میں رہتی ہے تو یہ بھی بدھی میں چلے گا کہ ہم باپ سے وشو کی بادشاہی کا ورثہ پائے رہے ہیں. سننے رہنے سے ہی بھاسنا آتی ہے. باپ سے سنتے ہیں, باپ کے پاس رہتے ہیں تو یہ بھاسنا آتی ہے کہ ہم کو باپ سے ورثہ ملنے والا ہے. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ باپ ہی ہم کو پڑھائے رہے ہیں, کوئی منشیہ گرو ہم کو پڑھانے والا نہیں ہے. اپنے گھر میں جاتے ہیں تو تھوڑا بھول جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ بھولتے تو ضرور ہیں. باپ کے گھر میں آتے ہیں تو انوبھوتی آتی ہے کہ ہم باپ کے گھر میں آئے ہیں, باپ سے پڑھائی پڑھنے آئے ہیں. تو یہاں آتے ہیں ساکار کے پاس. کیا یہ انوبھوتی بھی کب ہوتی ہے؟ یہ انوبھوتی تب ہوتی ہے جب باپ ساکار میں ہو. ایسے نہیں کہ 69-18 جنوری کو شریر چھوڑ دیا ہے برہما نے تو انوبھوتی خلاص ہو گئی, اور انوبھوتی خلاص ہو جائے تو ورثہ اب نہیں ملے گا. نہیں, باپ تو آیا ہوا ہے اپنا کاری کرنے کے لیے. اس کا کاریہ ہے ہی پتتوں کو پاون بنانا, بیچ میں واپس نہیں جا سکتا. تو تم بچے آئے ہو ساکار کے پاس, ساکار سے ہی ساری پراپتی ہونی ہے. اگر نراکار سے ہوئی ہوتی تو 63 جنم گیتا کا پاٹھ پڑھتے رہے. گیتا میں تو نراکار کی بات آئی ہے, بھلے کہہ دیا ہے گیتا میں کہ گیتا کا بھگوان کرشن ہے, لیکن بہت سے شلوک ایسے ہیں جو منیشی جانتے ہیں کہ گیتا میں جو گیان دینے والا ہے وہ نراکار ہے, ساکار نہیں ہے. یہ بھی جانتے ہیں, हम ज्ञान सागर पतित पावन बाप के पास जाते हैं। जाते हैं मन साकार है, निराकार के लिए तो नहीं कहेंगे कि जाते हैं और आते हैं। वैसे तो इतनी भाषा नहीं आती है। अगर साकार में ना आया हुआ हो तो वैसे इतनी हासना नहीं आती है कि कैसे बाप आकर के पढ़ाते। अभी तो भाषण आती है ना। अब यहाँ तो बाहर का हंगामा या कोई बाहर का वायुमंडल आदि नहीं है। बाहर की दुनिया में तो कितना हंगामा लगा पड़ा है। यहाँ तुमको संगम युग की पूरी पूरी भाषण आती है। संगम युग माने कलयुग की दुनिया में भी और आने वाली सतयुग की दुनिया में भी हम यहाँ अपने को महसूस करते हैं। बुद्धि में दोनों बातें रहती हैं। नई दुनिया का भी हम अनुभव करते हैं और पुरानी दुनिया का भी अनुभव करते हैं। ये बुद्धियों की बात है, संगम है। तो यहाँ तुमको संगम युग की पूरी भाषणा आती है, कभी इस पार कभी उस पार। बुद्धियों की बात है। घर में तो कोई न कोई गोरख धंधा लगा रहता है तो संगम युग की भाषणा नहीं आ सकती। परसेंटेज बाहर की दुनिया का बढ़ जाता है। यहाँ तो तुम बच्चे रिफ्रेश होते हो। अब तुमको काम होना चाहिए ज्ञान की धारणा करना और औरों को जाकर के सुनाना। ये तुम ब्राह्मणों का काम है, धंधा है। भक्त भगवान को याद करते आए हैं और कहते हैं बाबा आप जब भी आवेंगे तो हम आपसे फिर से सुख गनेरी लेंगे लेंगे। अभी गनेरे सुख लिए नहीं है, वो अतीन्द्रिय सुख अभी आरंभ नहीं हुआ है। जो गायन है अतीन्द्रिय सुख है वो गोपियों से पूछो। किनसे पूछो? गोप गोपियों। इसका क्या मतलब हुआ है? जो गुप्त पुरुषार्थ गुप्त संबंध जोड़ करके गुप्त पुरुषार्थ करते हैं और जो अपने संबंध को संसार के सामने उजागर कर दे है? जो भी संबंध जोड़ा है बाप के साथ अगर उसको दुनिया के सामने उजागर कर दे, जो दुनिया इन ज्ञान की बातों को जानती ही नहीं तो उनका क्या हाल होगा है? वो सुख घनेरे लेंगे या नहीं लेंगे? उनका सुख घनेरा लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनिश्चय बुद्धि विनश्यति हो गए। ऐसे बहुत निकलते हैं। कैसे? जो गोप गोपी बनते बनते फिर बाहर की दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। बाप से गुप्त संबंध जोड़ते जोड़ते क्या हो जाते हैं? हाँ हो जाते हैं। अहंकार आया और ये हुआ खेल खलास। तुम बच्चे तो सुख घनेरे लेने के लिए आए हो। जो अंत तक टिकेंगे वो सुख घनेरे जरूर लेंगे। अभी तुम जानते हो तुम्हारे पास तो वो ही भगवान आया हुआ है। कौन सा वो ही? माने कौन सा? जिसने पहले तुमको सुख घनेरे दिए थे अतीन्द्रिय सुख, जिससे अनुभव किया था, वही भगवान आया हुआ है। बाकी पुरुषार्थ चाहिए। बाप समझाते हैं कि तुम बाबा से कहो हमें ये सीढ़ी का चित्र दो तो हम इसको घर में रखेंगे और अंधों को रास्ता दिखावेंगे। सीढ़ी के चित्र बाबा छपवाए रहे हैं, फिर एक एक बच्चे को घर में टांगने के लिए देंगे। एक एक बच्चे को घर में टांगने के लिए सीढ़ी का चित्र देंगे। सीढ़ी के चित्र में क्या है? भारत के 84 जन्मों की कहानी। तो बाप पूछते हैं, गांवों के बच्चों समझते हो? बाप कहते हैं, भाई को तो भाई से वर्षा मिल नहीं सकता है, वर्षा तो बाप से ही मिलता है। रावण आधा कल्प तक दुख देते रहते हैं। अब मैं कहता हूं, मेरा बनने से तुम आधा कल्प के लिए विश्व के मालिक बन सकते हो। बाप तुमको फिर से लेने के लिए आया है, तुमको विश्व की बादशाही देने के लिए आया है। तो अब तुमको विश्व की सारी बादशाही लेने के लिए पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना पड़े। इसमें गफलत या सुस्ती वगैरह नहीं करनी है। रावण राज्य में तो है दुख और राम राज्य में है सुख। माना जो बच्चे अनुभव करते हैं कि हम बाप के बने हैं, तो उनको तो सुख होना चाहिए भाषणा में। अगर बाप के नहीं बने हैं तो अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है जो मैं दुख अनुभव कर रहा हूं। रावण राज्य में दुख होता है। तुम रावण के तो नहीं बने हो, तुम किसके बने हो? राम के बने हो। तो सुख भासना चाहिए ना। अब दुख और सुख का खेल चल रहा है। कभी रावण अपनी पाला में खींच लेता है, कभी राम अपनी पाला में खींच लेता है। ये सागर मंथन का खेल चल रहा है। बच्चे विचार सागर मंथन कर रहे हैं। कोई रावण की पाला में चले जाते हैं इसमें मंथन करते करते। तो रावण की पाला में जब चले जाते हैं तो गोप गोपी पना उनका खलास हो जाता है। जो गुप्त संबंध बाप से जोड़े हुए हैं, उन गुप्त संबंधों की बात बुद्धि में से उड़ जाती है। रावण राज्य में तो होता ही दुख है। तो सुख दुख का जो ये खेल चल रहा है, उसमें ऐसा पुरुषार्थ करो जो तुम स्वर्ग में तख्त नशीन बन सको अगले जन्म में। अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में स्वर्ग का अनुभव करना है। उसका नाम दिया क्या? स्वर्ग। क्या? क्यों स्वर्ग नाम क्यों दिया? इसी जन्म में अनुभव कब होगा? जब स्व माने आत्मा, ग आत्मा जब ऐसी स्थिति में जाए, कैसी स्थिति में? आत्म की स्थिति में जाए। स्व की स्थिति में अगर अपने को अनुभव करते रहेंगे, देहभान को त्यागते रहेंगे, घड़ी घड़ी अपन को देखना है मेरे अंदर देहभान तो नहीं आया, तो स्वर्ग का अनुभव करते हैं ही हेवनली गॉड फादर के बच्चे, तो क्यों नहीं सुख का अनुभव करेंगे? अब रावण से पहले बाप से वर्षा मिलता है। क्या राम और रावण दोनों हैं इस समय संगम में? दोनों की तरह बुद्धि आकर्षित होती है, लेकिन क्या करना है? हैं? राम की ओर बुद्धि ऐसी आकर्षित हो जो रावण का वर्षा पिछड़ जाए। और पिछड़ना भी है। क्या तुम राम का वर्षा लेंगे? पहले 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 कहां जावेंगे? पहले रावण की पाला में जावेंगे, द्वापर कलयुग में जावेंगे या सतयुग त्रेता में जावेंगे? पहले सतयुग त्रेता में जावेंगे। माने वो राम की गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो रावण से तुम पहले वर्षा नहीं लेते हो, किससे लेते हो? राम से पहले वर्षा ले तुम, क्या तुम लेते हो? वो ब्राह्मण वर्षा नहीं लेते हैं। कौन? जो दूसरे दूसरे वंश के हैं, इस्लाम वंशी है, चंद्रवंशी है, बौद्धी वंशी है, वो दूसरों से वर्षा लेते हैं, तो उनको वहां जाके जन्म मिलता है कम जन्म की पाला में। तो कम जन्म जहां होते हैं, कलाएं कम होती है, तो द्वापर युग में उनको कन्वर्ट होना पड़े। और तुम राम की पाला में आकर के डायरेक्ट वर्षा लेते हो, इसलिए तुम किसी जन्म में कन्वर्ट होने वाले नहीं हो।
तो सभी को लग रही है गर्मी।
तो अब रावण से पहले बाप से वर्षा मिलता है तुमको, क्या उनको नहीं मिलता है? उनको पहले किसका वर्षा मिल जाता है? रावण का वर्षा मिल जाता है। क्यों? तुमको क्यों मिलता है राम का वर्षा पहले, उनको रावण का वर्षा पहले क्यों मिल जाता है? कुछ कारण तो होगा ना, क्या कारण है? पहचान तो उनको मिलती है, पहचान भी मिलती है, निश्चय बुद्धि भी बनते हैं, लेकिन अब भी बिचारी याद में नहीं रह पाते, फिर भी दूसरों की बातें सुनने में लग जाते हैं। बाप का ज्ञान सुनते सुनते क्या हो जाता है? बाप का ज्ञान सुनते सुनते दूसरों की बातें भी सुनने लग पड़ती, तो द्वैत भाव बुद्धि में घुस जाता है। और जहां द्वैत भाव बुद्धि में घुसता है, तो रावण का वर्षा पहले लेना पड़े और राम का वर्षा पिछड़ जाता है। कोई तुम सदा से ही दुख में तो नहीं रहते थे? तुम तो पहले से ही सुख में थे, बाद में रावण आया है, क्या
बाद में?
तुम्हारे लिए बाद में रावण आया है और उनके लिए पहले ही रावण पकड़ लेता है। कहाँ? संगम युग में। उनको संगम युग में ही रावण पकड़ लेता है और तुमको रावण नहीं पकड़ पाता। क्यों नहीं पकड़ पाता? क्योंकि तुम बाप के बच्चे अंत तक बन करके रहते, तो हमेशा से तुम दुख में नहीं थे, मगर अब तो तुम दुख में रहे पड़े हो। लेकिन राम कोई तुमको दुख नहीं देते हैं। बहुत से ऐसे सोचते हैं कि हम बाबा के बने हैं तो हम दुखी क्यों हैं? बाबा के तो बने हैं बाहर से दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से झांक के देखें क्या हम पूरी श्रीमत पर चलते हैं? अगर पूरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं, थोड़ी थोड़ी रावण की मत पर भी चलते हैं, अर्थात मन मत पर चलते हैं, मनुष्यों की मत पर चलते हैं, तो जरूर दुखी होंगे। तुमको पढ़ाने के बाद ही मैं मुक्तिधाम जाकर के विश्राम करता हूँ। क्या तुम्हारी पढ़ाई पूरी होती है फिर मैं जाता हूँ मुक्तिधाम? उनकी पढ़ाई तो पूरी नहीं होती, उन्हें तो अनिश्चय पकड़ लेता है, अनिश्चय बुद्धि विनश्यंती हो जाते हैं, तो उनकी पढ़ाई तो पूरी होने वाली नहीं। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होती है फिर मैं मुक्तिधाम जाता हूँ, विश्राम करता हूँ। सबसे बड़ा दुश्मन तो ये रावण है, ये है रावण। कौन सा रावण? नहीं, देवान तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का बाप है, लेकिन रावण तो दस सिरों को कहा जाता है। पांच विकार, माया के पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और प्रकृति के पांच तत्व, उन पांच तत्वों का संघात और पांच विकारों का संघात, ये दोनों मिलकर के रावण के रूप बनते हैं। आधा नारी रूप और आधा पुरुष रूप। ये कोई सूक्ष्म की ही बात नहीं है। पहले सूक्ष्म का ज्ञान होता है, बाद में फिर स्थूल का भी ज्ञान होता है। क्यों? जिसका चित्र बनाया जाता है वो चरित्र करने वाला भी जरूर कभी हुआ है। कोई कहे ये दस सिर का कोई होता है क्या? दस सिर का नहीं होता है, लेकिन दस बुद्धियां आपस में मिलकर के कार्य करके दिखाती है। तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ये रावण है। बाबा कहते हैं तुमको तो मुक्ति धाम में जाना है, तुमको अब दुख धाम में नहीं जाना है। जाना नहीं है, लेकिन फिर बार बार चले क्यों जाते हो बुद्धि योग से? बुद्धि में दुख अनुभव क्यों होता है? हेवेनली गॉड फादर के बने हैं तो बुद्धि में सुख अनुभव होना चाहिए ना, दुखी क्यों हो जाते हो? तुम्हारा लक्ष्य तो है मुक्ति धाम जाने का, शांत में रहने का। शांति गले का हार है। तो जब शांति गले का हार है तो शांति उड़ क्यों जाती है? जरूर बुद्धि से माया का पक्ष लेने लग पड़ते हो, रावण के चंबे में आ जाते हो। अभी ऊंची से ऊंची बाप आकर के ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं क्या? वो जो पढ़ाई पढ़ाने वाले हैं जिनसे रावण के सिर बन जाते हैं, वो ऊंची से ऊंचे बाप नहीं है। और मैं ऊंची से ऊंचे बाप हूं। मैं तुमको ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ाता हूं और आकर के पढ़ाता हूं क्या? वो माया एक्ट ऐसी करती है, पढ़ाई भी पढ़ाती है, एक्ट भी ऐसी करती है। और मैं ऐसी एक्ट कोई नहीं करता हूं जो अकल्याणकारी हो। मैं जो कुछ भी बोलता हूं कल्याणकारी, मैं जो कुछ भी सोचता हूं वाइब्रेशन फेंकता हूं कल्याणकारी, मैं जो कुछ भी कर्म इंद्रियों से करता हूं वो सब कल्याणकारी। अकल्याण की बात ही नहीं। ऊंची से ऊंची हूं तो ऊंची से ऊंची ही कार्य करके दिखाऊंगा ना। ऊंची से ऊंचे काम है पतितों को पावन बनाना। तो ऐसा पुरुषार्थ न करो जो बाद में त्रेता युग में आओ चंद्रवंशी बन जाओ। क्या बाद में आने वाले क्या हुए? चंद्रवंशी हो गए। चंद्रवंशी क्यों हो गए? चंद्रमा की दशा उनके ऊपर क्यों बैठ गई? है? अरे नौ ग्रह है ना, उन नौ ग्रहों में एक चंद्रमा भी तो है। चंद्रवंशी क्यों हो गए? एकदम नीचे गिरे तो राहु के वंशी हो जाए। दूसरों की मत से प्रभावित हो जाते हैं तो वो दशा चढ़ जाती है। फिर वो दशा चढ़ने से नीच पद पा लेते हैं, कम जन्म हो जाते हैं, कलाएं कम हो जाती है, आत्मा डिग्रेड हो जाती है। तो ऐसे न हो कि तुम त्रेता में आ जाओ। क्या गिरती कला में आए और पूरी 84 जन्म की गिरती कला में 16 कला संपूर्ण में ना आए तो तुम चंद्रवंशी बन जाते। बाबा फिर भी कहते हैं कि पढ़ाई पढ़ते हो, रोज रोज पढ़ाई पढ़ते हो कि सातवें दिन पढ़ते हो? क्योंकि क्रिश्चियन लोग जाकर के गिरजाघर में सातवें दिन عبادت کرتے ہیں مسلمان لوگ، وہ شکروار شکروار جاتے ہیں، جمعہ جمعہ. تو تم روز پڑھائی پڑھتے ہو، پھر بھی بابا کہتے ہیں پڑھائی پڑھتے رہو. بچوں کو گیان کا منتھن تو بہت چاہیے. کیا؟ کائی کا منتھن؟ گیان کا. گیان میں نا جانکاری، سچی ہے جھوٹی؟ دیہداری منشی گروہوں سے آتی ہے جھوٹی جانکاری، اور باپ دیتے ہیں سچی جانکاری. سچے باپ ہے تو سچیوں کو استھاپن کرتا ہے اور سچی جانکاری دیتا ہے، سچا گیان دیتا ہے. تو بہت منتھن کرنا چاہیے. منتھن کریں گے تو رتن نکلے گا. بابا کو کہنا چاہیے، بابا ہم کو یہ چتر دے دو، تو ہم یہ چتر گھر میں رکھیں گے. کیا؟ کون سا چتر؟ سیڑھی کا چتر ہے، ایک خاص بھارت واسیوں کے لیے. بھارت واسی کتنے جنم لیتے ہیں؟ 84 جنم بھارت واسی لیتے ہیں. مانو سیکنڈ نارائن ہے اور اس کی پرجا ہے، کتنے جنم لے گی؟ 83 جنم لے گی. تو وہ پکے بھارت واسی نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ وہ دعا پریوگ سے دوسرے دھرم میں کنورٹ ہو کر کے بھارت واسیوں کو دھوکا دے جائیں گے. تو جب دھوکا دے جائیں گے تو بھارت واسی تو نہیں ہوئے. جو بھارت واسی ہوں گے وہ پورے 84 کا چکر لگانے والے. الٹی سیڑھی چڑھیں گے تو بھی 84 جنم کی 84 سیڑھیاں چڑھیں گے. تو بابا بچوں کے لیے یہ چتر بنواتے رہتے ہیں. یہاں سب کچھ بچوں کے لیے ہے. کیا؟ یہ 84 کا جو چکر بتایا ہے، 84 جنموں کی 84 سیڑھیاں تم اترتے ہو اور چڑھتے ہو، وہ یہاں سنگم یوگ میں انوبھو کرنی ہے. یہ چتر بدھی میں کھینچنا چاہیے کہ بھارت کے اتھان اور پتن کی 84 جنموں کی کہانی کیا ہے. یہ چتر استھول چتر بنانے کی بات نہیں ہے، یہ سوکشم چتر بدھی میں ہونا چاہیے کہ ہم بھارت واسی ہیں، ہم جہاں کے واسی ہیں اس کے 84 جنموں کو ہمیں پہلے جاننا ہے. ہم جس باپ کے بچے ہیں اس باپ کے اتھان اور پتن کی کہانی ہمیں پہلے معلوم ہونی چاہیے. اگر ہم پہلے جانیں گے تو ہماری بدھی میں فقر آئے گا. کیا؟ کہ ہم ایرا گہرا ونشی نہیں ہیں، ہم پکے سوری ونشی ہیں. تو باپ کو بچوں کا بہت فکر رہتا ہے. کہتے ہیں بڑا کہاؤنا بڑا دکھ پاؤنا. کیا؟ باپ تو بڑا ہے نا، سب سے زیادہ بچڑے والا کون ہے؟ باپ ہے. تو بڑا کہاؤنا بڑا دکھ پاؤنا. کیوں بڑا دکھ پاؤنا؟ کیونکہ بچوں کا بہت فکر رہتا ہے. چھوٹے جو ہے وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا دکھ دور کریں. باپ کا تو سب کچھ بچوں کے لیے ہوتا ہے. کوئی بھی باپ کس کے لیے کمائی کرتا ہے؟ بچوں کے لیے کرتا ہے. تو یہ تو بےحد کا باپ ہے. اس باپ کے پاس سکھ شانتی کی جو بھی پراپرٹی ہے، جو بھی شکتیوں کا اسٹاک ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ بچوں کے لیے. باپ کہتے ہیں بچوں میں تم کو وشو کا مالک بنائے خود پرم دھام میں چلا جاتا ہوں. اپنے کو تم آتما سمجھو اور باپ کو یاد کرو، کیونکہ آتما بھی اس سمے پتھر بدھی ہے. کیا؟ अहंकार में नहीं आ जाना चाहिए कि हम पारस बुद्धि बन पड़े। इस समय आत्मा सर्विस नहीं करती है, कौन सर्विस करता है? बाप दादा हम बच्चों में प्रवेश करके सर्विस कराते हैं, दृष्टि की सर्विस कराते हैं, वाचा की सर्विस कराते हैं, वाइब्रेशन की सर्विस कराते हैं। सर्विस करने वाला कराने वाला बाप दादा है। और हम तो 63 जन्मों की आदत के कारण बंदर बन पड़े। हम दुखदाई है, बाप सुखदाई है। तो ये बात बुद्धि में बैठनी चाहिए क्या कि हम अभी पारस बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं आ जाए, हम क्या है? पत्थर बुद्धि। जब पारस बुद्धि बनेंगे तो उसकी निशानी क्या होगी? है पारस बुद्धि की निशानी होगी जिसको देखेंगे वो भी पारस बनेगा, जिससे बात करेंगे उसकी बुद्धि में बात बैठेगी, जिसके भी संग के रंग में आवेंगे वो मूर्ति कला का अनुभव करेगा। अगर हमारे से कोई को गिरती कला का अनुभव हो, हमारी दृष्टि से कोई को दुख हो जाए, हमारी वाचा से कोई को दुख होने लगे, तो हम पारस बुद्धि नहीं बने। तो जो पत्थर बुद्धि है वो पतित है। अहंकार नहीं आना चाहिए क्या कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम बहुत ऊंचे हैं। जो पतित है फिर उसको ही सबसे पहले वहां राजी करना है। तो छोटा बनकर के रहने में फायदा है, बड़ा बनकर के फायदा नहीं है। अब तुम बच्चे गफलत मत करो, वहां तो कोई भी रोता नहीं है। कहां जो आने वाली नई दुनिया है वहां कोई भी नहीं रोएगा, और यहां रावण राज्य में है। तो रावण के राज्य में यथा राजा तथा प्रजा, अगर हम भी रोते हैं तो किसके राज्य में? रावण के राज्य में। ज्यादा कौन रोते हैं, माताएं रोती है या भाई लोग रोते हैं? हैं माताएं जास्ती रोती हैं। तो किसके राज्य में है? रावण के राज्य में। भाई लोग भी रोते हैं लेकिन अपना रोना अहंकार के कारण छुपाए लेते हैं, अंदर अंदर रोते हैं, बाहर पता नहीं चलता। बाप बच्चे बच्चे कहते रहते हैं और कहते हैं बच्चों तुम 63 जन्मों तक विकारों में गिरे हो, अब इस अंतिम जन्म में विकारों में नहीं गिरो। मैं आकर के खुद कहता हूं क्या, मैं आकर के खुद कहता हूं, ब्रह्मा के द्वारा नहीं, कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी के द्वारा नहीं, मैं खुद आकर के डायरेक्ट सामने कहता हूं कि अब सिर्फ एक जन्म तो पावन बनो। फिर भी बच्चे ऐसे हैं मानते ही नहीं, सब अपने धर्म कर्म से गिरे पड़े और सब अपने धर्म को जानते हैं, दूसरे धर्म वाले भी धर्म कर्म से गिरे पड़े हैं और अपने धर्म को जानते हैं, अपने कर्म को जानते हैं, धर्म पिता को जानते हैं, अपने धर्म खंड को जानते हैं। सिर्फ भारतवासी ही ऐसे हैं जो सबसे अधिक भ्रष्ट बने, अपने बाप को ही नहीं जानते। जानते ही नहीं तो मानेंगे कैसे? अभी तुम बाप के पूरे पूरे बने हो, तो سے پورا ورثہ بھی لینا چاہیے, وشو کا مالک بننا چاہیے نا, کم پد کیوں لے ہوئے. تم کو بابا بار بار سمجھاتے رہتے ہیں کیا کہ ابھی تم کو واپس گھر جانا ہے تو پورا پرشارت کر لو. گھر جانے سے پہلے اگر آتما میں ادھورا پن رہ گیا تو پراپتی بھی ادھوری رہ جائے گی, دھرمراج کی سجائیں کھانی پڑیں گی, اور جتنی سجائیں کھانی پڑیں گی اتنا ہی مرتبہ نیچا ہو جائے گا. مگر بچے پھر بھی بھول جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان نے آ کر کے بگایا ہے, لوگ کہتے ہیں جو کہنے والے ہیں جیسی ان کی درشتی ہے ویسی انہیں دنیا دیکھنے میں آتی, باپ بھی ویسا ہی دیکھنے میں آتا ہے. کیسا منشیہ جو ہے وہ جنم جنمانتر بھگانے کا کام کرتے آئے ہوں گے تو انہیں ویسا ہی باپ بھی دکھائی پڑتا ہے. ابھی باپ بھگاتے تو نہیں ہیں کہ کسی کی بانہ پکڑ کے لے جاتے ہو, کیا کرتے ہیں, بھگاتے نہیں ہیں تو کیا کرتے ہیں, اپنا بناتے ہیں, وہ بھی تو بھگانے والے اپنا بناتے ہیں. نہیں یہاں بدھی کو بھگاتے ہیں, یہاں کوئی شریر سے بھگانے کی بات نہیں ہے. بنسری بجاتے ہیں تو گوپ گوپیاں بھاگنے لگ پڑتی ہیں, یہ بدھی کو بھگانے کی بات ہے. باپ تو پڑھائی پڑھاتے ہیں, ایسی پڑھائی پڑھاتے ہیں جو بدھی باپ کی طرف بھاگنے لگ پڑتی. باپ کہتے ہیں کرم کرتے باپ کو یاد کرو, بھاگنے کرنے کی بات نہیں ہے. کیا کرنا ہے, کرم کرو اور باپ کو یاد کرتے رہو. بچوں کو ساکشاتکار بھی بہت ہوتے تھے, سورج کے سکھوں کے ساکشاتکار ہوتے تھے نا, وہ تو بکسی مار کی بات تھی. ساکشاتکار ہونا, سپن دیکھنا, یہ سب بکسی مار کی بات ہے. ابھی تو بچوں کی بدھی میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ نئی دنیا سامنے کھڑی ہے, نئی دنیا کا سنگٹھن دیکھنے میں آنا چاہیے. ابھی پھر تم کو لاسٹ میں بھی سب ساکشاتکار ہوں گے. کون سے ساکشاتکار ہوں گے, بدھیوں کے یا بنداخوں کے؟ بدھیوں کے لاسٹ میں سارے ساکشاتکار تم کو ہوں گے کہ کیا پد پاویں گے. تو بچوں کو یاد کا پرشارت بہت تیز کرنا, یاد کا پرشارت تیز کریں گے تو بدھی تیکھی بنے گی, بدھی تیکھی بنے گی تو بدھی کا ساکشاتکار ہوگا, اور یاد کا پرشارت نہیں کریں گے راون کی مت پر ہی چلتے رہیں گے تو راون سے تو بھکتی آتی ہے, رام سے گیان آتا ہے, ایک سے آتا ہے گیان اور انیکوں سے آتی ہے بھکتی. تو جو بھکتی کرتے رہیں گے, بھکتی میں بدھی لگی رہے گی تو شریر چھوڑنا پڑے گا, شریر چھوڑنا پڑے گا تو کیا انجام ہوگا. اس جنم میں جو پراپتی کرنی ہے وہ 84 جنموں والی پراپتی نہیں کر سکے گی, اور جب 84 جنموں والی پراپتی نہیں کر سکیں گے تو دوسرے دھرم میں کنورٹ ہونا پڑے گا, گدی نشین نہیں بن پائیں گے. اوم شانتی.